नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश में अल्ट्रा हाई स्पीड सेवाओं को तेजी से अपनाने के बीच 2023 में भारत में कम से कम 3.1 करोड़ उपयोगकर्ताओं के 5G फोन लेने की उम्मीद है, एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। एरिक्सन कंज्यूमर लैब ग्लोबल सर्वे के अनुसार भारत में 5G ने 4G की तुलना में समग्र नेटवर्क संतुष्टि को 30% तक बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण और सामर्थ्य के आधार पर 2023 में 3.1 करोड़ उपयोगकर्ता 5G फोन ले सकते हैं। ये देश में 5G को अपनाने के लिए विशाल अवसर प्रस्तुत करता है। भारत में 5G उपयोगकर्ता वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग सेवाएं, मोबाइल गेमिंग आदि के लिए इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं। वह अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, चीन और कई ऐसे अन्य जैसे शुरुआती 5G बाजारों में उपयोगकर्ताओं की तुलना में इन सेवाओं पर प्रति सप्ताह औसतन 2 घंटे अधिक बिताते हैं। देश में कोयला उत्पादन सितंबर महीने में 15.81% बढ़कर 6.72 करोड़ टन रहा। एक साल पहले इसी महीने में ये 5.80 करोड़ टन था। कोयला मंत्रालय ने बुधवार को बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान कोयला उत्पादन 12.06% बढ़कर 42.82 करोड़ टन रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 38.22 करोड़ टन था। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन सितंबर महीने में बढ़कर 5.14 करोड़ टन रहा, जो एक साल पहले इसी महीने में 4.57 करोड़ टन था। कोयला आपूर्ति आलोच्य महीने में बढ़कर 7.03 करोड़ टन रही, जो बीते वित्त वर्ष के इसी महीने में 6.11 करोड़ टन थी। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मंगलवार को कहा कि उसने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज स्वीकृत किए हैं, जिसमें हवाई अड्डा परियोजनाएं भी शामिल हैं। बिजली परियोजनाओं को वित्त मुहैया कराने वाली कंपनी PFC ने BSE को दी गई सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल की बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी गई। स्वीकृत परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश का एक हवाई अड्डा परियोजना भी शामिल है। इसके साथ PFC ने पहली बार किसी हवाई अड्डे को कर्ज देने का फैसला किया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने कारोबार में विविधता लाने की रणनीति से संबंधित एजेंडा की समीक्षा भी की। इस बैठक में नए बाजार खंडों में कदम रखने की संभावनाएं तलाशने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्त पोषण बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। प्याज पर निर्यात शुल्क में वृद्धि के विरोध में व्यापारियों द्वारा निलंबित की गई प्याज की नीलामी 13 दिन बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले की करीब सभी कृषि उपज बाजार समितियों में फिर से शुरू हुई। बाजार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एशिया के सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव APMC में मंगलवार सुबह 545 गाड़ियां पहुंची। उन्होंने बताया कि शुरुआती सत्र में प्याज की कीमतें न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 2,541 रुपये प्रति क्विंटल और औसत 2,100 रुपये प्रति क्विंटल रही। प्याज व्यापारी प्याज पर निर्यात शुल्क 40% तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के हालिया कदम का विरोध कर रहे थे। वो 20 सितंबर से हड़ताल पर थे और नीलामी रोक दी थी। व्यापारियों ने सोमवार को यहां जिला संरक्षक मंत्री दादा भूसे के साथ बैठक में इस शर्त पर हड़ताल वापस लेने का फैसला किया कि सरकार एक महीने में उनकी मांगों पर फैसला करेगी। हालांकि नंदगांव में व्यापारियों ने हड़ताल वापस नहीं ली है और वहां नीलामी निलंबित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में देश भेजेगा। मीडिया की एक खबर में मंगलवार को ये जानकारी दी गई। समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि IMF मिशन के साथ बैठक के दौरान कार्यवाहक सरकार कर और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों पर चर्चा करेगी। खबर के अनुसार एक बार आर्थिक समीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होने और बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान को IMF से 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। IMF ने $3 अरब के राहत पैकेज के तहत जुलाई में पाकिस्तान को $1.2 अरब दिए थे। लार्सन एंड टर्बो की एक अनुषंगी इकाई को मुंबई में पुल निर्माण का ठेका मिला है। LNT की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार LNT कंस्ट्रक्शन के परिवहन ढांचा कारोबार इकाई को मुंबई में दहिसर भाईंदर पुल परियोजना का ठेका मिला है। ये ठेका बृहन मुंबई महानगर पालिका से मिला। पुल दहिसर और बहिंदर के बीच यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देगा। इसमें अभी 45 मिनट से अधिक समय लगता है। ये पुल 4.5 किलोमीटर लंबा होगा। कंपनी ने ठेके के मूल्य का खुलासा नहीं किया है, हालांकि ये बड़ा ठेका है, इसीलिए इसका मूल्य 2500 से 500 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि गूगल के अनुचित रणनीति का इस्तेमाल करने के कारण सर्च इंजन के रूप में उसका प्रभुत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसी रणनीति के चलते ही उनकी कंपनी का प्रतिद्वंदी कार्यक्रम बिंग विफल रहा। बिंग भी सर्च इंजन के रूप में काम करता था। नडेला ने गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के खिलाफ दाखिल एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान वॉशिंगटन डीसी की अदालत में गवाही दी। ये मुकदमा कंपनी के खिलाफ सरकार द्वारा दाखिल किया गया है। न्याय मंत्रालय का आरोप है कि गूगल ने उपभोक्ताओं की कीमत पर प्रतिस्पर्धा और नवाचार को कम करने के लिए अपने सर्वव्यापी सर्च इंजन के प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है। माइक्रोसॉफ्ट पर भी 1990 के दशक के अंत में ऐसे ही आरोप लगे थे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।